پر بنیامین، یہ کیا کیا تم نے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟
بنیامین، کیا یہ سچ ہے تم نے ایسا کیا ہے؟
یہ ہے عزیز مصر کی محبتوں کا صلہ، ان کی محبتوں میں کوئی کسر رہ گئی تھی، کیوں آخر کیوں تم نے ان کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا؟
تم نے ہمیں اہل مصر کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔
یہ اس شخص کی سامان سے برآمد ہوا ہے۔
نتیجہ محبت یہ ہے؟
ہم عزیز مصر کے سامنے شرمندہ ہیں۔
اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس میں تعجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اس نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند ہماری پھوپھی کے ہاں سے چرایا تھا۔
آپ لوگ بہت برے انسان ہیں۔ آپ لوگ اپنے بھائی کی نسبت جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لے جاؤ اسے۔
اب ہم بن یامین کے بغیر بابا کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟
اب کیا ہوگا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟
ویسے کیا واقعی بن یامین نے چوری کی تھی جو وہ اسے لے گئے؟
آپ سب نے تو اس کی اور اس کے بھائی یوسف کی چوری کی تائید کر دی نا، یا نہیں کی؟ یہی وہ سازش تھی کہ جس کا بابا کو خدشہ تھا۔
ہم نے خدا کو حاضر ناظر جان کر بابا سے عہد کیا تھا، خدا کو گواہ بنایا تھا کہ ہم ہر قیمت پر بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔
اب ہم کس منہ سے واپس جائیں گے؟ بابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟
کیا بابا ہمارے یقین کر لیں گے کہ بنیامین نے چوری کیا؟
یہ سب ہی گواہ ہے، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نا۔
ہم سب ہی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اسحاق نبی کا کمر بند حبی فائقہ نے خود یوسف کی کمر میں باندھا تھا۔ کون جانے کہ عزیز مصر کا طلائی جام بھی کسی اور نے بنیامین کے مال میں نہ رکھ دیا ہو۔
ہمیں کیا معلوم حقیقت کیا ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ طلائی جام بنیامین سے برآمد ہوا ہے۔
کیا تم بنیامین کو نہیں جانتے؟ یا یوسف کے کمر بند والے واقعے سے بے خبر ہو جو اسے چور قرار دے دیا؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ چند پیغمبر زادے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں اور پھر مرے پہ سو درے کے اپنے اسی مردہ بھائی پر چوری کی تہمت لگاتے ہیں اور توبہ کے لیے بھی تیار نہیں؟ واقعاً ڈوب مرنے کا مقام۔
بجائے لڑنے کے بنیامین کو نجات دلانے کے لیے کچھ کرو۔
ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا اور جیسے بھی بن پڑے بنیامین کو ساتھ ہی لے کر آئیں گے۔ میں بنیامین کو لیے بنا کنعان واپس نہیں جاؤں گا۔
اب ہم کیا کریں؟ کچھ تو پتا چلے کہ ہم رکیں یا چلے جائیں۔
تھوڑا انتظار کر لیں، شاید وہ بنیامین کو آزاد کر دیں۔
کس مصیبت میں پھنس گئے فرزندان اسرائیل کیا تو؟
ہم ظہر تک ان کا انتظار کریں گے، اگر وہ نہیں آئے تو ہم لوٹ چلیں گے۔
مجھے افسوس ہے، عزیز مصر آپ لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں.
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنیامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود چلتے بنے؟ کچھ تو کیجئے. آپ کو خدا کا واسطہ, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے دریغ مت کیجئے.
افسوس میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا.
کیا ہوا جناب مالک؟
کیا وہ بنیامین کو آزاد کر
رہے ہیں؟ آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کیجیے.
آیا عزیز مصر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟
بنیامین کے بغیر بابا کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں ہے.
یہ ممکن نہیں, ممکن ہی نہیں کہ ہم عزیز مصر سے ملاقات کیے بنا واپس لوٹ جائیں.
یا تو وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دے یا پھر ہم سب کو ہی گرفتار کر لیں.
میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا.
جو کام آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد کوئی کیسے آپ کی سفارش کرنا پسند کرے؟
ہم عزیز مصر کو اس سے کہیں بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نا امید کریں.
امید کرتا ہوں کہ عزیز مصر ایسا نہ کرے.
دیکھنا پڑے گا. جناب یوزار صیف نہایت ہی غصے میں تھے.
ایسا کریں, آپ لوگ یہیں رکیں, ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. ہم ابھی آتے ہیں.
اپنا اسلحہ تحویل میں دے دیں اور جائیں.
ٹھہر جائیں, آپ لوگ یہی انتظار کریں, ہم انہیں مطلع کرتے ہیں.
آ گئے وہ لوگ؟
ہم نے انہیں کہا ہے کہ دیکھو کوشش کرتے ہیں, امید ہے وہ آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے.
وہ سب لوگ اس وقت دروازے کے پیچھے کھڑے, اجازت ہو تو اندر لے آؤں.
انہیں ہمارے اس کھیل کی بھنک تو نہیں پڑی نا؟
نہیں, بظاہر تو انہیں تمام واقعے پر یقین آ گیا ہے.
بنیامین کو یہاں سے لے جائیں. چند سپاہیوں کو بھی چوکنا رکھیں, ممکن ہے کہ وہ نا امید ہو کر کچھ غلط کام کر بیٹھیں. نیمی صاحب انہیں بھیج. کنانیوں کے قانون اور سنت کے روح سے چور کو 4 سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے. یہ آپ نے خود ہی کہا تھا نا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
عزیز مصر کو خادموں اور غلاموں کی کیا کمی؟ مہربانی فرما کر عنایت کریں اور بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں.
خطا کار کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو دوبارہ دہراتا ہے.
اے عزیز مصر, بنیامین کے بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے. خدا را اس مصیبت زدہ باپ پر رحم کیجیے.
क्या मेरी मोहब्बतों का यह सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए।
आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर लें, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने।
उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी।
आप पैगंबर ज़ादे जनाब इज़हार सीब से क्या तवक्को रखते हैं?
आपको गुलाम चाहिए ना, अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है?
मुझे गुलामों की क्या कमी, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तथहीर हो सके, वगरना तंबीह और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा।
आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है।
इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो।
अगर कोई भी हरकत की तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाएं, चले जाएं।
हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर हैद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं?
बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं।
आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया?
उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था।
क्या हुआ लाबी, बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ?
नहीं मालूम, नहीं मालूम, सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे।
अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकेंगे चले जाएं, क्या करें?
मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजर हैं।
हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं, अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब देंगे?
लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा।
लावी, लावी
जाए, चले जाए, तमाम खानदान वाले आपके मुंतजर हैं, चले जाए।
ये तो बता दो, अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहां ढूंढेंगे?
बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं।
चलो चलो।
मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे?
बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे।
इस तरह से आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है।
तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा।
लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं।
वो कैसे?
याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था?
हाँ, वही हमारे अबू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना।
अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी तब कहीं उन्हें पाया, लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है।
यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबेन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है?
बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया।
बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिजर फिराग अब खत्म होने को है।
इसमें कोई शक नहीं, बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे।
तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो असलात। नमूना इंसान कामिल और महर मोहब्बत का संबंध तो जनाबे यूसुफ है और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द तो मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाजा है, ना कि हसनात।
मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूं। वो जितना मुझ पर ना मेहरबान थे, मेरे दस्त निगर रफराज से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे।
आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको?
मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने।
तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप?
नहीं मालूम, अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था, अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती।
यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्ज़त के बगैर अंजाम नहीं देते।
यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है।
आंखों की बिनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इस्तवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है।
मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क महबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं।
बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं।
आ गए,
आ गए, कारवा वाले आ गए,
आ गए।
रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता।
अब बाबा से क्या कहेंगे?
सलाम चाचा जान।
सलाम।
सलाम चाचा।
सलाम चाचा जान।
खुश आमदी।
खुश आमदी चाचा जान।
सलाम।
चाचा बिन्यामिन कहाँ है?
नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए?
तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है।
चाचा यहूदा, मेरे बाबा लावी कहाँ है?
परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो।
क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
लावी कहां है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग?
बिन्यामिन को क्या हुआ है बताओ, आखिर वो है कहां?
अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल करती है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहां है? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतजिर रहे? आखिर क्यों?
परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सानहा नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं।
बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा।
अगर वो सलामत हैं, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए?
इसलिए कि बिन्यामीन अजीज़ मिस्र का गुलाम हो गया।
इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज़ मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया।
जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो।
लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं, काफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था।
ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है।
ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है।
अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है।
नहीं, नहीं। शायद आप लोग न जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है।
बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता।
लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाया?
उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा।
वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया।
ये सब तुम्हारे जहन की इख्तरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता है। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुताले कह रहे हो वो सब झूठ है।
हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था।
गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हसरत हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द लेने लगा और आंखें खून के अश्रुओं ने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर न करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आपको मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन मेरा लाल।
बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा।
आपको खुदा का वास्ता, पहले ही आपकी बिनाई कमजोर है, अजीज रोहन आप बिना हो जाएंगे।
बाबा, बाबा, बस करे यूसुफ, मेरी यूसुफ, बाहे कनान, जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफक पर नमदार होते हो तो मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुलास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है। मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रख कर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो?
बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं।
हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा?
तुमने तो कहा था कि अजीज़े मिस्र बड़े रहम दिल और दयालु हैं, तो फिर अब क्या हुआ?
नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया।
बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं।
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
माँ, क्या हमारे चाचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है?
वो चोर नहीं है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तोहमत लगा रहे हैं।
लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था।
ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तभी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं।
इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं।
अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरूका माल बरामद नहीं हुआ?
वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीजे मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं।
बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बेनियामिन को चोर समझते हैं?
मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा।
मुझे भूख नहीं है, चली जाओ।
जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊँगी।
अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है।
इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा बाबा, आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई है।
आइए दादाजान, आइए यहाँ बैठ जाइए।
आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदा ना खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं बाबा?
क्या हुआ दीना?
क्या हो गया?
ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी?
यूसुफ, 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 मेरे बच्चे।
क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं।
सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए आप बस कीजिए।
मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं, जाओ मुझे तना छोड़ दो।
हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा, हम तो आए हैं ताकि आप।
मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर।
बाबा सुने तो सही।
बाबा हमारी बात सुनो।
मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बेनियामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ
बाबा, बाबा
इज्जत करती हूँ। आई अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों।
क्या हुआ है? क्या हो गया है?
बाबा की आंखें सफेद हो गई।
सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया।
कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा।
कोई फायदा नहीं,
मेरी आगे तो तुम्हारी।
लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा।
मेरे यूसुफ, मेरे गुंगश्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे?
बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना।
आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा।
एक बार तुम्हें और देख लेता।
आखिर कब तक रोएंगे?
लगता है ये
दरवाजा खोलिए।
लेकर जाऊंगा
बाबा।
आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो
बाबा?
नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा,
نے یوسف کو مجھ سے چھین لیا، میرے بنیامین کو مجھ سے چھین لیا، اب مجھے رونے سے بھی روک رہے ہو؟ اگر کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے جگر خوشوں کے لیے روؤں بھی نہیں؟ میں اسی لیے کہ نام سے تم چلا گیا تاکہ تم لوگوں سے دور ہو جاؤں۔ گوشہ نشینی اختیار کی تاکہ تنہائی میں اپنی یوسف کے لیے جی بھر کے گریا کر سکوں۔ اب یہ بنیامین اور لاوی کا ایک اور داغ مجھے دے دیا، اور پھر بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ میں گریہ نہ کروں؟ چاہتے ہو کہ میں اپنے پیاروں کے لیے نالا و فریاد نہ کروں؟ میرے پیچھے چھوڑ دو۔
آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ آخر اتنے پیچھے چھوڑ کیوں نہیں رہتے؟ سب کچھ تم نے چھین لیا۔
میں نے تم لوگوں کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے یوسف کے ساتھ تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔
وقت بجانی بھی، ہم نے وہ خطار گناہ کیا ہے جس کی سزا ہمیں ساری عمر بھگتنی ہوگی۔
میرے یوسف، میرے نظر، تم ہمیشہ اپنے فرشتوں کے معصوم چہرے، بچوں کی سی صورت اور اسی معصومیت کے ساتھ میرے سامنے آ جاتے ہو۔ تمہیں دیکھنے کے لیے میں ان ظاہری آنکھوں کا محتاج نہیں، تم ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہو، کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔
اے کاش برسوں پہلے ہم نے توبہ کر لی ہوتی اور تمام حقیقت بتا دی ہوتی، اور اتنے سال خود کو اور بابا کو رنج نہ دیا ہوتا۔
ہمیں جتنا بھی برا بنا کہا جائے اور جتنی بھی تحقیر کی جائے وہ کم ہے۔
بڑی مشکل سے تو ہم یوسف کے واقعے کو بھلا پا رہے تھے کہ عزیز مصر نے بنیامین کو روک کر پرانے زخموں کو تازہ کر دیا ہے۔
میں تو ان کا نہایت سپاس گزار ہوں، وہ باعث بنے تاکہ ہمیں اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہو۔
تم لوگوں کو یاد ہے جب ہم نے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، لیکن دیکھا تم لوگوں نے، خدا نے ہم سے توبہ کرنے کی توفیق ہی صد کر لی۔ 40 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ہم ابھی تک توبہ نہیں کر پائے۔ 40 سال۔
جانتا ہوں غلطی سراسر میری تھی، میں سمجھا تھا کہ توبہ کرنا آسان کام ہے۔
درود بر یعقوب نبی۔
فرشتے بھائی، خوش آمدید، دیکھ رہے ہیں آپ میں اپنے یوسف کی فراق میں کیا کیا نہ سہ رہا ہوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ میری حالت کیا ہو گئی ہے؟
یوسف کو کس نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا ہے؟ یا
تمام جہانوں کے خالق اور پروردگار خداوند متعال نے۔
بجس یوسف تمہاری کتنی اولاد ہے؟
بیٹی تینا کو ملا کر 12 اولادیں۔
جس کے 12 جانشین موجود ہوں وہ صرف ایک فرزند کے فراق میں یوں بے قرار ہوا کرتا ہے یعقوب؟
ان میں سے کوئی بھی یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا، یوسف بے مثل ہے۔
بے مثال صرف خداوند یکتا کی ذات ہے۔
یوسف آئینہ خدا نما ہے، اسے دیکھتا تھا تو گویا جلوائے جمال خدا اور مظہر تجلی خالق کو دیکھتا تھا۔ میں اپنا آئینہ خدا نما گھوم کر بیٹھا ہوں۔
تمام کائنات جلوائے جمال خداوند اور تجلی خدا کا مظہر ہے، اپنے اطراف پر ذرا نگاہ ڈال۔
لیکن تمام موجودات ہستی ولی خدا نہیں، یوسف ولی خدا تھا۔ میں اپنا وہ آئینہ خدا نما گھوم کر بیٹھا ہوں جو مجھ پر حق ولایت رکھتا تھا۔
تمہیں کیسے پتا چلا کہ یوسف تم پر حق ولایت رکھتا ہے؟
کیونکہ اس نے خواب میں मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था।
खुदावंद बड़ा गयूर है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है या और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती।
वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक।
याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था?
उस वक्त जब खुदावन ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा।
नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावन ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है। शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। भाई, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यक्ता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यक्ता ही काफी होगा।
हर शक्ति के बाद राहत है, शायद ये दर्द और गम की इंतहा और राहत और सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिजर और फिराक और आगाज विसल नजदीक हो।
मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा?
जरा गौर करो, तमाम हालात और वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे।
फरिश्ता है वही, कहां है आप? आज के बाद से मैं अपनी तमाम तरकीले शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिले दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफहूम में इश्क का इतराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता।